Yeah. বিষয় দুর্জন সদা কামরত কিছু নাহি মোর গুণ বিষয় দুর্জন সদা কামরত কিছু নাহি মোর গুণ राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिकामाधवासं प्राप्तो जस्य प्रतितिकृपया सिक्तं नतोऽस्मि वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि हा देवी काकुभरगदगदयाद्यवासा जाचि निपत्तभुवि दण्डवतोद्भटाति आशा प्रसादमबुधस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके तव गणे गणनं अङ्गश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दे कृतेन्दे वरं जाड्डञ्जागुडरुचि संविदधतङ्पट्टं वरस्य बृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलसत्तामाभिरामोदरं राधासन्दनिवेशितोष्णभुजं ध्यायेम् दाम् भक्त्याविहीनाय अपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गम् कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्तायं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाय पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेतुं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतोऽस्मि तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्नाम चरणं यत किं करिष्यु बहुशा खलु काकुलानी नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्डम् जस्याकदारसनिधे विशुभानुजाय ततके श्यामसुन्दरशिखण्डशेखर स्मेरहासमुरली मनोहर राधिका रसिकमां कृपानिधे स्वप्रियाचरण किङ्कर प्राणनाथ वृषभानुनन्दिनी श्रीमुखाब्जरसलोलशट राधिका पदतले कृतिस्थितिं त्वां भजामि रसिके संविधाय दशने पीडन पादयो कृतवाल्मीकि जन्मनि मदेश्वरी।
श्याम सुंदर हम लोगों पर प्रसन्न हो। जो अपनी प्राण या श्रीमती राधिका के चरण तलों में जन्म जन्मांतर के लिए हमें किंकरी बने, संविधाय दशने थे, दांतों के अंदर में ऋण धारण करके हम आज जन्मदिन में प्रार्थना करते हैं। कृष्ण आज आविर्भूत हुए हैं, किस लिए आविर्भूत हुए? दो दृष्टि से देखा जाए, एक दृष्टि है स्थूल और एक है अत्यंत सूक्ष्म। स्थूल दृष्टि से देखने पर कृष्ण असुरों का संहार करके पृथ्वी का भार उतारने और धर्म की संस्थापना करने के लिए आते हैं, ये स्थूल दृष्टि क्योंकि साधारण मनुष्य इसे अतिरिक्त देख नहीं सकता है। एक आदमी मन ही मन में कृष्ण को अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, ये आदमी नहीं देख सकेंगे स्थूल दृष्टि लोग। और एक आदमी अभी वेदों का ओम सहस्त्र शिष्या इत्यादि पाठ कर रहा है, स्वाहा स्वाहा यज्ञ कर रहे हैं, 1108 ब्राह्मण लोग यज्ञ में स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, 1008 कुंड बने हैं, कुछ नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं, सब जगत के लोग देखने के लिए आए, स्थूल चीज है ना। उसी प्रकार से ब्रह्मा इत्यादि देवता लोग वेदों की ऋचाओं के द्वारा उनकी स्तव स्तुति करते हैं, स्थूल है। हम लोगों ने जो भी पाठ किए सब, विशेष करके ये राजपंच अध्यायी का जयतिथिकम अथवा शीतकुच मंडल धितकुंडल ए ये इत्यादि सब, अथवा जो भी हम लोगों ने पाठ किया सुचारु वक्त्र मंडलम ये सब, अथवा जो अभी प्रार्थना है श्याम सुंदर शिखंड शेखर इत्यादि किया, ये वेदों की कोटि कोटि जन्मों तक कोई स्तव स्तुति वंदना करें किंतु इसके तनिक एक अणु के बराबर भी नहीं होगा। ये सब चीजें स्थूल है, असुरों का मारण, युग धर्म का स्थापन, धर्म की रक्षा, वर्णाश्रम धर्म की रक्षा इत्यादि, ये सब स्थूल है। भगवान क्या करते हैं मत्स्य कुर्म वराह निसिंह राम बामन परशुराम निसिंह राम रूप में धारण करके कल्कि इत्यादि का भी उनको कोई विशेष आनंद नहीं आता। इन सब अवतारों के द्वारा भूभार हरण करके असुरों का दलन करके वर्णाश्रम धर्म की एक तरह से रक्षा करते हैं, वेदों को रक्षा करते हैं। किंतु कृष्ण का उद्देश्य क्या है? सर्वोत्तम उनकी जो मधुरजमय लीलाएं हैं जगत में उसको प्रकाश करके यदि एक जीव भी उसके तरफ में अग्रसर हुआ, उसको लोभ उत्पन्न हुआ तो उनकी लीला सार्थक हो जाती है। कृष्णचंद्र जी ब्रज में आए, असुरों को मारा किस लिए? दुष्ट लोगों के चित्त को आकर्षण करने के लिए, स्थूल बुद्धि वालों के लिए। किंतु उनका उद्देश्य क्या था? गोवर्धन धारण करना उनका मूल उद्देश्य नहीं है। गोवर्धन धारण के माध्यम से गोपियों का वह रास पिलास प्रकाश करेंगे, यदि किसी भी जीव का यदि कृष्ण के तरफ में थोड़ा सा भी लोभ उत्पन्न हो जाए तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए कृष्णचंद्र जी रास इत्यादि जैसी मधुर लीलाओं का, उनकी वात्सल्यमयी लीलाओं को, उनको सख्यमयी लीलाओं को, जन्म से लेकर के जितनी भी उनकी लीलाएं हुई हैं विशेष करके ब्रज तक, यह है किसके लिए? ब्रजवासी भाव को लुब्ध कराने के। द्वारका इत्यादि के लीलाएं हुई हैं ऐश्वर्यमयी लीलाओं के तरफ में आकृष्ट करने के लिए, अश्रुओं का मारण इसमें नवीनीकरण के लिए लगाया, नहीं तो लोगों को रुचि नहीं हुई, साधारण लोगों को। इसलिए कृष्ण के जन्म का लीला का उद्देश्य अपनी मधुरमयी लीलाओं का प्रकाश करके जगत के जीवों को आकर्षण करने के लिए है, किंतु उसमें उसको और रोचक बनाने के लिए ये सब लीलाएं हैं। जब वो गोलोक वृंदावन में थे उस समय में उन्होंने सोचा जगत के जीव हमारी इन लीलाओं से अपरिचित हैं, वे लोग हमारे नारायण इत्यादि रूप की बहुमानना करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं। लोग समझते थे पहले कृष्ण लीला से पहले कृष्ण हमारे आराध्य हैं, उनके बहुत ऐश्वर्य हैं, अघटन घटन पटेशी शक्ति वाले हैं, उनकी चार भुजाएं हैं या हजार भुजाएं हैं, हमारे सखा हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे पुत्र हैं, ये भाव प्रकाशित नहीं था। इन सब भावों को जगत में प्रकाशित करने के लिए जो भक्त ही हमारे आराध्य हैं, राधिका जी की आराधना करते हैं, इसलिए उनका नाम राधिका के कृष्ण के द्वारा उनकी आराधना होती है, इसलिए उनका नाम राधा है। देखो और सब लीलाओं में भक्त लोगों की वंदना स्तौ स्तुति करते हैं, ब्रह्मा जी स्तुति करते रच पच जाते हैं। और इधर देखो जन्म लेकर वृंदावन में गोकुल में इधर उधर में घूम रहे, नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूप, नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम जसोदाभियोलु खलधाममानम परामिष्टमत्यं ततो द्रुत्यगो। कृष्णचंद्र जी भ्राजमानम अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, कुंडल झलक रहे हैं, जसोदा के मैया से भीत होकर के उदुखल से कूद करके भाग रहे हैं, और जसोदा मैया लठिया लेकर के उनका पीछा कर रही है। और किसी लीला में ऐसा देखा गया? कभी नहीं देखा गया। कृष्ण को उन्होंने पकड़ लिए, जिनको जोगी लोग तपस्या के द्वारा पवित्र हुए मन के द्वारा जिसके एक झांकी नहीं उनके चरणों कमलों की होती, और उसको इन्होंने पकड़ लिया और लठिया दिखला है, मारूं मारूं चो बंदर बंधो इत्यादि, झूठा लबार ऐसे कह करके डांट गई। हमारे कुल में तेरा जैसा चोर पैदा नहीं हुआ। और वो शिशक शिशक करके रो करके पीछे जा रहे हैं लठिया के डर के मारे, बोले जी हम मैया मुझे मत मार, अब मैं कान पकड़ता हूं, मैं नहीं करूंगा। इस तरह से कभी कोई देखा गया? जसोदा माँ की स्तव स्तुति वंदना करें, मैया मुझे मत मार, रोते रोते रोते। कोई भक्त भगवान के लिए इतना रो करके कम पुकारेगा जितना कि कृष्ण इतना अधिक रो रहे हैं, गंगा जमुना का पानी मिलकर के कज्जल के साथ में दोनों मिलकर के बह रहा है, एकदम चारों तरफ भर गया, ऐसा कौन रोया कृष्ण जैसे। इस तरह से गोपियों राधा जी के विरह में कैसी इनकी स्थिति हो जाती है कि उस लोभ को धारण करके संवरण नहीं कर सके, अब नवदीप की लीला में किस प्रकार से रोते हैं। इसलिए ये ब्रज की लीला है कृष्ण, इसलिए वो आए जगत में। यदि नहीं आते गोपियों का यह भाव कृष्ण के प्रति जगत में कोई नहीं जानता, विशेष करके चैतन्य महाप्रभु जगत में नहीं आते। यदि नाशित गौरांग नहीं तो तबे की हई तो केवल इत्यादि राधार महिमान ब्रजर जगत में कौन जानता। यदि महाप्रभु जी नहीं आते, महाप्रभु माने राधा और कृष्ण दोनों का मिलित तनु, कृष्ण ही राधा जी के भावों को ग्रहण करके और उनके अंग कांति को ग्रहण करके भाव में मग्न होकर के कृष्ण को जनाया, कृष्ण धाम को जनाया, कृष्ण प्रेम को जनाया, गोपियों के प्रेम को और राधा प्रेम की सीमा को उन्होंने जनाया, नहीं तो कोई जगत का नहीं जाना। वही नारायण का भजन करते, गणेश जी का और सब भजन करते, कृष्ण का भजन इस तरह से कोई नहीं करता। इतना करने पर भी नहीं लोग करते, और किताब ब्रज में देखेंगे राधा कृष्ण के साथ में गणेश जी बैठे हुए हैं, तो और जगह क्या देखेंगे। इसलिए महाप्रभु आए और इसका प्रचार किया कृष्ण। कृष्ण इन लीलाओं को प्रकाश करके भक्तों को आकर्षित करने के लिए ही यही उनका मूल कारण है, और धर्म स्थापना, असुरों का विनाश, ये सब गौण कारण है। उन्होंने पहले क्या किया, देखो विचार किया, जैसे इस ब्रज प्रेम को जगत में लुटाना है, आस्वादन करना है, सबको आस्वादन करना है, इसलिए उन्होंने क्या किया, सोचा जे क्या करें। साथ ही साथ उनके दिमाग में आया कंस को भेजो, कंस माने पूरा पूर्व जन्म का कालनेमी के भेजो, और भेज करके खूब अत्याचार कराओ, और उसके साथ में पाषंडियों का जन्म दो, अगासुर, बकासुर, जरासंध इत्यादि, दुर्योधन इत्यादि सबको दो। रावण के युद्ध में, रावण के युद्ध में राम ने जिन जिनों को लोगों को मारा, बंदरों ने मारा, उनको सब जन्म दिया यहाँ पर इसी रूप में, और जन्म दे करके उत्पात आरंभ किया। पृथ्वी देवी किसी भार से नहीं दबती हैं, वो दबती हैं किस तरह से, पाप के भार से। पापों में भार सबसे अधिक क्या, बहुत तरह के पाप हैं, उन पापों से अधिक नहीं घबराती। यदि भक्तों को कष्ट दिया जाए, इस कष्ट को वो नहीं सह सकते। कृष्ण लीला में अक्रूर, उद्धव, जदवंशी लोग, कंस के पिता उग्रसेन जी इत्यादि को कष्ट देना आरंभ किया इस कंस ने। जन्म ही कैसा उसका हुआ, जन्म उग्रसेन के और से नहीं हुआ, दुर्मिल दैत्य से उसका इस मथुरा में कहीं जन्म हुआ। पाप का साक्षात वो मूर्ति था, इसलिए उसको जन्म आया यहां पर, और अत्याचार करना आरंभ किया, पृथ्वी त्राही त्राही करके गोप रूप धारण करके देवताओं के पास में गई, और देवता लोग सब लोग मिलकर के ब्रह्मा जी के पास में, और ब्रह्मा जी खीर समुद्र के तट पर, जहां तक कि उनकी सीमा थी बस वहां तक, इसे आगे नहीं जा सकते, बस वहीं खीर समुद्र में, नहीं ये समझो जे वो बीच का जो समुद्र है, हाँ कारण समुद्र, और उसके आगे नहीं जा सकते, ये बस सीमा उनके यही। इस ब्रह्मांड में खीर समुद्र के तट पर गए, ध्यान लगाया, स्तव स्तुति आरंभ हुई, गर्भदशाई तक उनकी प्रार्थना जा सकती है, इसे ऊपर नहीं जाएगी, इसलिए गर्भदशाई को उन्होंने प्रार्थना की, और प्रार्थना से उन्होंने कहा, जे मुझे पता है हमारे प्रभु ने हमको आदेश दिया है, उनके प्रभु कौन, कृष्ण स्वयं आदेश दिया है कि मैं अपने परिकरों के सहित ब्रज में उत्पन्न होऊंगा। देवकी के गर्भ से मैं मथुरा में, और जसोदा जी के गर्भ से गोकुल में मैं जन्म लूंगा। तुम जितने देवता लोग हो, जादुओं के वंश में पुरुष पुरुष के रूप में, और स्त्रियां राधा जी इत्यादि गोपियों की सेवा करने के लिए वो प्रकटित हों। इसको सुन करके ब्रह्मा जी ने सबको कहा और ब्रह्मा जी इन लोगों को बोले और आदेश दिया। ये लोग सब जदुवंश में, गोप वंश में इन लोगों ने आविर्भूत होना आरंभ किया। उनकी पत्नियां भी ये गोपियों गोपियों के रूप में कुछ गोपियां भी हैं, वो देवी गोपी। एक गोपी है, एक तो काय विवाह रूपा गोपियां हैं, दूसरा है नित्य सिद्धा, और साधन सिद्धा में भी जौथकी अजौथकी ऋषिचरी मुनिचरी, एक देवियां और एक सुतियां हैं। देव देव गोप कन्या देव कन्या ऋषिचरी ये सब हैं देवता, ये लोग भी आए। और इसके बाद में देवकी का विवाह वसुदेव जी से कराया, और उसी समय में आकाशवाणी होती है। यह आकाशवाणी माने कैसे, उन्हीं की इच्छा से होती है, कंस को उद्विग्न करने के लिए और अत्याचार बढ़वाने के लिए, मेरा जल्दी से हो। अंत में विवाह के समय में आकाशवाणी हुई, रे कंस इतनी घटा से उत्सव पूर्वक अपनी बहन को जिस तरह से ले जा रहा है, उपहार दे करके बड़े आदर के साथ में, इसी का आठवां गर्भ का पुत्र तुम्हें वध करेगा। बस चौंक उठा और उठ करके हाथ में तलवार ले ली, घोड़े की लगाम छोड़ दी, तलवार ले ली और एक उसका केश पकड़ लिया और वध करने के लिए उद्यत हुआ। वसुदेव जी बहुत चतुर थे, उन्होंने देखा जाइए मार नहीं सकता, दैववाणी कभी मिथ्या नहीं होगी। अब दूसरे में असुर कंस ये सोचता है कि दैववाणी हुई है, हम इसको मिथ्या, एक विश्वास किया और फिर अविश्वास, विश्वास नहीं करता तो उसको मारने क्यों जाता। इसलिए उसको विश्वास हुआ कि इसके पुत्र आठवां हम मारेगा हमें, किंतु देखो आध अर्ध को कोटि न्याय विश्वास किया, पूरा विश्वास नहीं किया। सोचा जाए ये जो आकाशवाणी है इसको हम मिथ्या कर देंगे, इसको मार करके, किंतु यदि वो आकाशवाणी सत्य है तो मिथ्या कैसे कर सकेगा, असंभव, यही असुर विचार है। और वसुदेव जी कहते हैं कि ये मार नहीं सकता है, हमको निमित्त बनना है इसको बचाने के लिए, इसलिए मधुर मधुर वाणी से उसको बुझाते हुए, जब किसी तरह से नहीं माना तो उन्होंने कहा कि इसका जो लड़का होगा, लड़की होगी या लड़का, तो क्या करूंगा, तुम्हारे लड़के के साथ में इसकी शादी कर लो दूंगा। उस पर नहीं माना तो उन्होंने कहा जैसा अपने सब लड़कों को तुम्हें दे दूंगा, तुम्हारी जो इच्छा है बात, मान गया। अंत में किस प्रकार से लड़का हुआ, कैसे वो गोकुल को गए, किस रूप में उनका जन्म और सब लीलाएं हुई, अभी दशम स्कंध हम लोग प्रारंभ से पाठ करेंगे। पहले अभी शुभानंद जी पाठ करेंगे, इसके बाद में ये लॉक शाम तक नहीं टूटेगा, बीच बीच में कीर्तन होता रहेगा। शुभानंद जी हैं, मंगल महाराज जी हैं, जीत कृष्ण प्रभु हैं, हमारे ये प्रभु जी हैं, सुधर सूर्यकांत जी, नवीन कृष्ण, हमारे गुरु भाई कौन हैं, ये सत्यानंद प्रभु, रसानंद प्रभु जी, ये सब लोग, जितने बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, ये सब लोग पाठ करेंगे। दोपहर में सोना आज उचित नहीं, ऐसा हो कि हम यहाँ से उठे और सब सभा बिगड़ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। खूब उत्साह के साथ में सभी लोग कुछ कुछ लोग और बाकी लोग यहाँ पर क्रमशः पाठ करेंगे। आज एकदम तार नहीं टूटना चाहिए, आज यहीं तक हम समाप्त करते हैं, इसके बाद में आरंभ करो, आगे सत्यानंद क्या रसानंद पाठ करें, इसके बाद में तो फिर मंगल महाराज जी हैं या शुभानंद भी पाठ करेगा।